प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हमारी क्लास नंबर 29, जिसका नाम है नामान की सात डुबकियां। नामान के बारे में आज क्लास है, एक घटना बाइबल में, ठीक है, जो उस समय तो एक घटना थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा एक आत्मिक मतलब है कि नामान को यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारने से कोहड़ से क्या मिल गई? चंगाई मिल गई, सफाई हो गई। पढ़ते हैं ये वाक्य पहले। दूसरे राजा उसका 5:1-14 तक। दूसरा राजा 5:1-14। दूसरा
5:1-14।
हाँ जी।
इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया।
नहीं,
दूसरा
दूसरा
राजा
राजा 5:1-14।
दूसरा राजा अध्याय 5:1-14।
ये दूसरा इतिहास पढ़ रहे हो आप।
ओ सॉरी,
दूसरा राजा पांच का, दूसरा राजा यानी पांच का कितना, पांच का कितना,
1 से लेके 14 तक।
आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था।
तो सीरिया, सीरिया को हिंदी में आराम बोला है। तो
अभी आप जाइए, अभी हमें कोई आया हुआ है, जिस मिला ओके तो है, मतलब कोई नहीं, बात नहीं है ना, आप प्लीज अभी जाइए।
तो नामान नामक एक सेनापति, सीरिया के राजा का सेनापति, पढ़ो आगे।
आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनवा कर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सुमरों के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता।
सामरिया,
हाँ है,
सामरिया, सामरिया।
सोमरोन लिखा हुआ है, चलो ठीक है, देखिए क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजरायल के राजा का के पास
खत लिखता
एक
हूँ।
पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जनता की मैंने जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाले और जिलाने वाले परमेश्वर हूँ? क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नवान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास से कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नवान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा, क्या दमशिक की अबना और पपर नदी इज़राइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं?
तो दमशक, दमशक, पर अबाना, ऐसी तीन नदियों के नाम बोलता है। इज़राइल में और भी नदियां, वो यर्दन से उत्तम नहीं है?
इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भी भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया।
तो ये है सारा खाता जो नामान सीरिया का सेनापति था, राजा का सेनापति था, बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन उसको एक बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी, जो बड़ी भयानक बीमारी होती थी उन दिनों में, जो आज कैंसर और एड्स जैसे बोलते, जिसका कोई इलाज नहीं होता था। और ऐसा होता था कि धीरे 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 आपको मृत्यु के नज़दीक ले जाती थी कोढ़ की बीमारी, और आपको समाज से अलग कर दिया जाता था, एक अलग गुफा में रखा जाता था सारे कोढ़ियों को। देखा होगा आपने पिछले समय में ऐसा होता था। तो ये एक बंदी बनाई हुई लड़की इज़राइल से लेके आए थे, और जो नामान के घर में सेविका का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी, और उसने नामान की पत्नी को बोला कि अगर नामान सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाए, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता उसके पास जाए, तो उसका कोड अच्छा हो सकता है, वो उसका कोड अच्छा कर सकता है। जरा सोचो, ऐसी खबर सुनी तो कितना खुशी की बात होगी। तो सीरिया का जो सेनापति ये नामान, तो अपने राजा के पास जाता है और राजा को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा मेरी सेविका ने बोला है कि कोई भविष्यवक्ता है इज़राइल में जो मेरे कोड को अच्छा कर सकता है। तो राजा ने क्या बोला, ठीक है, मैं राजा को पत्र लिख देता हूँ, इज़राइल के राजा को, तुम चले जाओ और देख लो। तो जब ये जाता है तो देखो यहाँ पे आगे क्या बोलता है, बोला 10 सिल्वर के गुण और 6,000 सोने के सिक्के और वस्त्र लेके जाता है, और लेके जाता है और उसको बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। तो राजा क्रोधित हो जाता है, मैं कोई भगवान हूँ जो उसका कोट चंगा कर दूंगा? उसने सोचा शायद पक्का ये जो नामान सीरिया का जो राजा है ये हमसे युद्ध करना चाहता है, बहाने ढूंढ रहा है। उसने अपने कपड़े पार दिए दूसरे से कि मैं भगवान हूँ जो उसका कोट अच्छा कर दूंगा। तो ये बात एलिशा को पता चलती है, और एलिशा को जब पता चलता है कि राजा ने कपड़े पार दिए ऐसे ऐसे, तो एलिशा बोलता है ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। अभी एलिशा के द्वार पे आए कोई, मान लो मुझे कोई बड़ी भयानक बीमारी है और मुझे पता है इसका इलाज अंदर है, ठीक है, और वो अंदर वाला बाहर आके देखे भी ना बीमारी, डॉक्टर मान लो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर दरवाजे से ही बोल दे उसको, बोलो जाके वो दवाई ले ले ठीक हो जाएगा, कैसा डॉक्टर है ये, देखा भी नहीं, चेक भी नहीं किया, बीमारी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही बोल दिया। तो ऐसे ही एलिशा ने किया, दरवाजे पे आया और अपने सेवक को भेजा, बोलो जाओ उसे जाके नामान में जो यर्दन नदी है उसमें 7 डुबकी मार ले और कोड अच्छा हो जाएगा। तो नामान बड़ा क्रोधित हो जाता है, मैंने तो सोचा था वो आएगा कोड पे हाथ रखेगा और मेरा कोड अच्छा हो जाएगा, ये क्या है, अबाना, दमकस और इज़राइल में और बहुत सी नदियां हैं जो यर्दन से उत्तम है, तो मैं उनमें डुबकी लगाऊं, उनमें नहीं हो सकता, यर्दन में ही क्यों ऐसा हो पाएगा। तो क्रोधित हो जाता है। तो इतने में उसके जो सेनापति के नामान के जो साथी होते हैं, उसके दास के साथ जो होते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें एलिशा कोई बड़ी बात करने के लिए बोलता, ठीक है, या बड़ी भेंट मांगता, कुछ मांगता, तुम करते ना, तो क्या बुरा है? तुम इसमें
नाने को नदी में।
देख लो, क्या पता अच्छा हो जाए। तो
हाँ
जरा सोचो, नामान ने पहली डुबकी लगाई होगी, कुछ फर्क नहीं, दूसरी डुबकी लगाई, यार ऐसे अलीशा ने मेरे मुझे बस पागल बनाया और कुछ नहीं, चौथी डुबकी लगाई, पांचवी डुबकी लगाई, छठी डुबकी लगाई, छह डुबकियां लगाने।
तब तक कुछ नहीं हुआ।
देखो सोचो जरा, ये भी बात है कि उसने किया पूरा, नहीं तो आदमी सोचा छोड़ ये ऐसे ही, मुझे लगता है कुछ नहीं
हाँ
हुआ,
एक दो डुबकी में निराश हो जाता है।
छह डुबकियां तक पहुंचाया है, चलो सातवीं भी लगाता हूँ। और जब सातवीं लगा के बाहर निकलता है तो क्या देखता है? बच्चे से भी कोमल मांस, कोड अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी घटना में देखते हैं हम, ऐसा एक वाक्य हुआ, और यर्दन नदी ही क्यों, बहुत गुस्सा, बहुत निराश के मेरे साथ मिला भी नहीं, आके मुझे देखा भी नहीं, लेकिन जब एंड हुआ, एंड क्या हुआ, सातवीं डुबकी के बाद सारा कोड़ क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो ये सात डुबकियों वाला जो तजुर्बा रहा इसका, नामान का, ये बहुत बढ़िया रहा। पहले क्रोधित हुआ लेकिन जब देखा तो बहुत बढ़िया लगा। छह बार लगाई कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सातवीं के बाद ही क्या हुआ, जो असली प्रभाव था वो पड़ा, ठीक है। तो एक और वचन पढ़ लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य के बारे में जिक्र किया है, तो इसका मतलब इसमें कोई आत्मिक बात तो होनी चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ खास बात तो होनी चाहिए। लूका 4:27, लूका चार का सत्ताईस
और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे।
4 का 27।
और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नमान को छोड़
कोई
उसमें से
अच्छा,
कोई शुद्ध नहीं किया गया।
तो नमान के समय बोलता और भी बहुत से कोड़ी थे, लेकिन नमान ही अच्छा हुआ, सब तो अच्छे नहीं हुए। तो जब ये इसका कोड अच्छा हुआ होगा, वापस जरूर आया होगा एलिशा के पास, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, ये वो, लेकिन उसके बारे में बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, और ना ही वो उस हिस्से में हम जाएंगे। हम तो जाएंगे इसमें आत्मिक जो शिक्षा है वो क्या है इस चीज में। क्यों नामान अच्छा हुआ? क्योंकि उसने विश्वास किया। ओके ठीक है, पहले गुस्सा हुआ लेकिन उसने विश्वास किया कि शायद मैं अच्छा हो सकता हूँ, तो ऐसे। तो चलो, ये तो थी नामान का तजुर्बा, ये तो नामान ने देखा, महसूस किया। अब जो बड़ी खास बात है सिस्टर, आप इधर ध्यान करो, बाद में फिर मुश्किल होगी। तो अब इसमें आत्मिक पाठ क्या है समझने के लिए, नामान के तजुर्बे में सबसे पहले इसमें आता है कोड़। तो कोड का मतलब क्या है? क्योंकि कोड एक चिन्ह है परमेश्वर के वचन में। कोड किस चीज का चिन्ह है? क्योंकि बाइबल में आप देखो, सबसे जो ज्यादा बीमारी का जिक्र हो रहा है किसका हो रहा है? कोड का ही हो रहा है, कोड का ही जिक्र हो रहा है। तो ये कोड में, कोड एक चिन्ह है परमेश्वर के वचन में जिसका कुछ मतलब है। वो क्या है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले कोड, कोड के प्रभाव देखते हैं। कोड सबसे पहले एक जो चीज करता है वो क्या करता है, आपकी जो जो चेहरे की या शरीर की बनावट है उसको
खराब,
बिगाड़ देता है,
स्किन खराब हो जाती
स्किन खराब हो जाती है, नंबर एक, ठीक है, मतलब कि बिगड़ जाती है आपकी
है।
शक्ल सूरत। तीन चीज, तीन इफेक्ट, तीन प्रभाव होते हैं कोड के। नंबर एक ये, नंबर दो ये कि आपका जो सिस्टम है ना शरीर का, उसको नाश कर देता है। सिस्टम नाश करने का मतलब क्या है, जब कोड हो जाता है ना तो आप, हम सबके अंदर एक बीमारियों के साथ लड़ने का एक सिस्टम है, वो वीक होता जाता है कोड होने से। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब बिल्कुल फंक्शनिंग बंद हो जाती है, फिर बुखार आया तो वो भी परमानेंट हो जाएगा, जुकाम हो गया वो भी परमानेंट, क्योंकि बीमारी की लड़ने की जो क्षमता थी वो कोड की वजह से नाश हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट ये होता है। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि आपको महसूस करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है आप में। जैसे जैसे जब आप, हम मुझे पिंच करोगे तो मुझे, मैं दुख लगेगा, मैं बोलूँगा क्यों कर रहे हो सर, लेकिन कोड वाले बंदे को वो फीलिंग जो है महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये तीन प्रभाव पड़ते हैं कोड के एक इंसान पे। ठीक है, तो कोड़ी धीरे धीरे इतना भयानक हो जाता है कि बस, इसीलिए उसको जब कोड हो जाता है ना किसी को, तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता है, उसको एक खास जगह पे रखा जाता है। ठीक है, पहली बात उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज कोड की बीमारी लाती है हमारे शरीर पे, और ये तीनों के तीनों जो प्रभाव आए हैं कोड की वजह से, उसको हम अब आत्मिक तरीके से भी देखेंगे वो तीनों प्रभाव। कोड चिन्ह का मतलब है पाप, याद रखना पाप। सो कोड का मतलब क्या है,
पाप।
पाप क्या करता है, पाप करता है सबसे पहले हमारी चेहरे की बनावट बिगाड़ देता है। पहला प्रभाव यही था ना, चेहरे की बनावट जो क्या है बिगाड़ देता है, यही हुआ। परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया था, अपने स्वरूप और अपने जैसा, लेकिन इंसान पाप करने की वजह से क्या हो गया,
कुरूप हो गया,
बदल गई ना चेहरे की,
बदल गई।
ठीक है, दूसरा प्रभाव अदन की वाटिका में, जब पहले कई में अदन की वाटिका में आदम बनाया था बिना पाप, लेकिन पाप करने की वजह से इंसान रहा परमेश्वर जैसा। ठीक है, दूसरी जो चीज, दूसरा मैंने क्या बोला था, बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो है नाश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब पाप फैलता है तो पाप का प्रभाव नाश लाता है। नाश किस पे, आपके शरीर पे बीमारियां, आपके दिमाग पे, आपके मन पे, आपकी भावनाओं पे, आपके रिश्तों पे, हर जगह पाप क्या करता है, नाश करता है, पूरे सिस्टम को क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव। और तीसरा प्रभाव धीरे धीरे आपको किधर ले जाता है, मृत्यु के नजदीक ले जाता है। तो पाप की मजदूरी मौत है। तो इसीलिए पाप को जो चिन्ह दिया है परमेश्वर ने, कोड का दिया है बाइबल में। तो कोड का मतलब है क्या है,
पाप।
अभी कोड से छुटकारा पाना है तो ये घटना बाइबल में ऐसे नहीं लिखी। बाइबल बहुत कुछ हुआ है पुराने नियम में, नए नियम में, लेकिन सब लिखा नहीं गया है। लेकिन हम अब तक ये जानते हैं कि जो कुछ लिखा गया है उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। अगर ये नामान का तजुर्बा था तो इसमें कोई ना कोई बात छिपी हुई है, इसीलिए परमेश्वर के वचन में है, नहीं तो नहीं होती। जैसे आप मूसा का पूछ रहे थे, मूसा की कौन बाप है, कौन, डजंट मैटर, परमेश्वर को वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो नाम देने के किसका बेटा था, वो क्या था, ये वो, लेकिन जो उसका हिस्सा था वो जरूर लिखा है बाइबल में। इसी तरीके से बहुत सी घटनाएं बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है जो हुई हैं, लेकिन जो जिनमें कुछ सीखने के लिए है वही लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा पाठ है कि अगर कोर से छुटकारा पाना है तो सात डुबकियां लगनी है। चाहे आप कलीसिया की उद्धारता लगाओ चर्च की, और या आप संसार की, संसार को भी अगर कोड से छूटना है पाप से तो सात डुबकियां मारनी पड़ेंगी। अब ये सात डुबकियां क्या हैं, एक एक करके हम देखेंगे। ये सात डुबकियों का मतलब है सात पड़ाव, या सात सीढ़ियां, ठीक है, सात डुबकियों का मतलब है सात सीढ़ियां या सात पड़ाव या सात स्थितियां लगाओ, ठीक है। हर एक को ये इस दौर से गुजरना होगा, इस स्थितियों से गुजरना होगा अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो। परमेश्वर ने के वचन में कोर से चंगा होना है तो ये है तरीका, सात बार यर्दन में डुबकी मारने है। तो अब ये सात बार डुबकी मारने का मतलब क्या है, सात स्थितियों का मतलब क्या है, वो हम अभी देखेंगे। पहले इससे पढ़ लो रोमियां 15:4 में, कि जो कुछ भी लिखा है, मैं वही बोल रहा हूं, जो कुछ लिखा है हमारी शिक्षा के लिए लिखा है। रोमियां 15:4
रोमियां जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें।
तो देखो दिलासा मिलता है, धीरज मिलता है, और हमारी शिक्षा के लिए, तो हमारी कौन, कलीसिया की शिक्षा, ठीक है। तो ये जो अब सात स्थितियां है ना, या जो सात जो पड़ाव हैं या सात सीढ़ियां हैं जिसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है, वो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे।
हमारे पास मिल जाएगा आपको जो पूछ रहे हैं, बाद में पूछ रहे
हैं। तो पहली डुबकी, सबसे पहली डुबकी या पहला कदम जो उठाना है पाप से छुटकारा पाने के लिए, वो क्या है, वो है विश्वास।
विश्वास
सबसे पहली डुबकी या पहला कदम अगर कोर से चंगा होना है तो विश्वास। किस पे विश्वास? परमेश्वर पे विश्वास, उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास, कि उसके इकलौते पुत्र ने वो बहुत बड़ा बलिदान जो सलीब पे दिया, उसके जरिए हमें क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। उसने हमारे पापों के लिए क्या दी, जान दी, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज, जो पहला कदम या पहली सीढ़ी जो है पाप से छुटकारा पाने के लिए, कोर से छुटकारा पाने के लिए, वो है विश्वास। इब्रानिया 11 उसका 6 में पढ़ लो, इब्रानिया 11 उसका 6।
और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
उसे का मतलब परमेश्वर,
परमेश्वर
बिना विश्वास परमेश्वर को खुश। अभी 11:6 अभी ये विश्वास कौन सा? विश्वास ये नहीं कि हम मानते कि कोई भगवान है, नहीं, विश्वास वो नहीं, विश्वास इसके इकलौते पुत्र पे, उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास जो करेगा वो उठाएगा पहला कदम कोर से छूटने के लिए, पाप से छूटने के लिए। ये बात साफ साफ पढ़ लो, यूहन्ना 14:6 प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यूहन्ना 14:6
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
सो विश्वास ये नहीं करना, हाँ पर हम भी मानते हैं भगवान एक है, ये वो सब नहीं चाहिए। वो विश्वास किस पे? प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि दरवाजा कौन है?
यीशु मसीह।
उसके बिना और कोई दरवाजा या रास्ता
नहीं
है, ठीक है। तो साफ साफ है, तो पहली डुबकी या पहला कदम अगर पाप से छुटकारा पाना है तो वो है विश्वास। जब हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं तो हमारा सही कदम पाप से छुटकारा, पाप से चंगा होने का, कोर से चंगा होने का कदम पहला उठ जाता है, ठीक है। ये है पहली डुबकी। उसके बाद दूसरी डुबकी या दूसरा कदम क्या है, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास में आ जाएं, उसके बाद हमें दूध की जरूरत है, क्योंकि अब हम मसीह में क्या हैं, बच्चे हैं। तो पहला पत्रस 2:2 दो का दो क्योंकि बाइबल है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताती है, तो वो दूध हमें चाहिए अभी।
पहला पत्र,
हाँ जी पहला पत्र दो का दो। सिस्टर आप एक काम करो, आप इनको नोट करते जाओ, घर जाके बाद में आप पढ़ लेंगे,
बाद में हम बता देंगे, हमारे डिस्कस कर लेना
बाद में। एक बंदा पढ़ते जाओ, बाकी सुनो, आपको सुनना है मेल, ठीक है।
बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो।
देखो, तो जब हम विश्वास में आ जाते हैं उसके बाद हमें भूख होनी चाहिए किस चीज की, सच्चाई के लिए। यह है दूसरा कदम, प्यास, सच्चाई की प्यास होनी चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, नया जन्मा बच्चा, उसको क्या चाहिए हमेशा, दूध। तो हमें भी वैसे ही जब हम मसीह में बच्चे हैं तो दूध की जरूरत है, दूध की जरूरत है। और जब हम दूध पिएंगे ना, जब हम दूध पिएंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये बात पढ़ लो, एफिसियों 5:26।
कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए।
सो ये जो देखो आप, हम बाहर से आते हैं, मिट्टी विट्टी लगी है, धूल मिट्टी है, कितना जब हम नहाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हमारा आत्मिक स्नान जो है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। तो जब आपने देखा होगा, जब सब जब नए नए हम सब मसीह में आते हैं, तो सब जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम सब अपने अपने कामों को देखते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ। शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, गलत काम करने वाले सब सोचते हैं कि भाई अगर मसीह जीवन जीना है तो हमें ये सब छोड़ना है। तो ये है दूसरा कदम, क्योंकि पवित्रता, नहाना, स्नान जो है वो वचन से होता है। यूहन्ना 17:17 में भी यही बात है ना, क्या
सत्य को जानोगे,
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ठीक है। नोट कर लो सिस्टर, आप वचन नोट कर लिया करो, बाद में आप पढ़ लेना, बाद में घर जाके ना। यूहन्ना 17:17 वचन साफ साफ हमने बहुत बार पढ़ा है, परमेश्वर का वचन है पानी, शुद्ध पानी जो हमें पाप की स्थिति से क्या करता है। तो 17:17 सो दूसरा कदम जो है वो है पछतावा मन में। पहला कदम विश्वास को कर लिया प्रभु यीशु मसीह पे, उसके बाद दूसरा कदम है पछतावा, मुझे पछतावा हो रहा है कि मेरे काम जो है अच्छे नहीं है। अब मैं पानी से नहा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, मुझे प्यास है, मैं दूध पी रहा हूँ, तो मेरी सफाई होनी शुरू हो रही, पछतावा होना शुरू हो रहा है, मन में पछतावा, तौबा होनी शुरू हो रही है कि मुझे अब सुधरना है, ठीक है। तो ये है दूसरा कदम, दूसरी डुबकी। तीसरी डुबकी क्या है? तीसरी डुबकी है कि बाइबल को पढ़ने से धीरे धीरे जब बच्चे थोड़ा थोड़ा मसीही चाल चलन आना शुरू हो जाता है, जैसे एक एक ईसाई का चाल चलन, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो क्या बोलते हैं, हमें बदलाव आना शुरू होता है, हमारे बुरी आदतें, हमारे बुरे रास्ते, पापी काम, उनको छोड़ना शुरू करते हैं। ये पढ़ लो यूहन्ना 16:8।
वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपण करेगा।
तो पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है, ये सीखने को मिलता है। तो दूसरा कदम क्या है, मन में पछतावा होता है। तीसरा कदम क्या है, मैं वो कामों को छोड़ता हूँ, मुझे पता चल जाता है ये चीज पाप है, ये चीज गलत है, अब मुझे मसीह में मैं आ गया हूँ, मुझे ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये है तीसरा कदम। मैं पहले गालियाँ, बुरी बुरी भाषा, ये सब मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन जब मैं मसीह में आ गया तो मुझे पता चला कि ये सब मुझे नहीं करना है। अगर मैं ये सब करूँगा तो प्रभु कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही मेरा छुटकारा हो सकता है पाप से, ठीक है। तो ये गड़ी बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी गालियाँ जो मुँह से निकलती हैं, अय्यूब याकूब में लिखा है हम एक ही जुबान से परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसी जुबान को गंद मंद बोलने के लिए इस्तेमाल करते, तो ये नहीं करना है। परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं उनको, उनके जीवन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरे कदम पे छूटना शुरू होता है कि हाँ मुझे ये नहीं अभी करना है। शराब, बीड़ी, सिगरेट और ऐसे जो गलत गलत काम, बुरी बुरी आदतें जो हैं, जो परमेश्वर के वचन में जिनके बारे में लिखा है कि ये गलत हैं, जो शरीर के काम हैं उनको छोड़ना है। शरीर के काम हमने देखे हैं गलातियाँ 5वें अध्याय में, शरीर के काम भी हैं और आत्मा के काम भी हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम तीसरे कदम में त्यागना, छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये होती है तीसरी डुबकी। नोट कर लो बात, चाहे हम हो चाहे ये कल को जो संसार है, सबको इन 7 डुबकियों लगानी ही पड़ेगी, तभी ही पाप से छुटकारा होगा। और जब पाप से छुटकारा होगा तभी मौत से भी छुटकारा होगा, ठीक है। तो जब पाप नहीं रहेगा तो मृत्यु भी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद चौथी डुबकी क्या है, चौथा कदम या चौथी डुबकी? चौथी डुबकी है वाचा, पूरी वाचा, परमेश्वर के साथ पूरी वाचा बांध ली कि आज से मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा। आज से मैं किसकी इच्छा करूंगा? परमेश्वर की इच्छा करूंगा। तो हम समझ लेते हैं वचन की गहरी पढ़ाई से कि खाली विश्वासी होके मसीह में विश्वासी होने का बुलावा नहीं है। बुलावा किस चीज के लिए है? फिलिपियां 1:29 पढ़ लो। फिलिपियां 1:29, जी,
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ।
खाली विश्वास ही नहीं करना है, उसके लिए
दुख भी उठाना है।
तो ये कदम पे बड़े दुख की बात है, कोई पहुंचता नहीं है,
बड़ी कठिन रास्ता
है, कोई पहुंचता नहीं है तीसरे कदम तक। बस ठीक है, मसीह को अपना लिया है, विश्वास दिखा लिया है, बपतिस्मा कर ले लिया है, संडे चर्च जाते हैं, थोड़ा बहुत कामों में भी थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन पूरा नहीं, उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं है, ये सिर्फ तीसरी डुबकी है। चौथी डुबकी है वाचा, वाचा बांधनी परमेश्वर के साथ, एक रिश्ता स्थापित कर लेना, पर जैसा प्रभु का रिश्ता था ना वैसा ही हमारा रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बाप बेटे का रिश्ता, एक बेटा जैसे अपने बाप को सब कुछ बोल देता है ना, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ऐसा, पापा वैसा, और बाप ताड़ना भी देता है, बेटा नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वो एक रिश्ता स्थापित करना है, वाचा बांधनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और खाली विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला, होने वाला तब है जब हम उसके लिए दुख उठाएं। अब दुख उठाने के लिए कितने राजी हैं इस धरती पे आप देख सकते हैं। उसके बाद पहला पत्रस 2:21 भी पढ़ लो ये बात।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो।
तो बुलावा इसीलिए है कि एक नमूना रख गए हैं प्रभु यीशु मसीह। नमूना क्या है कि मैंने कुर्बानी वाला जीवन जिया है और तुम भी अभी वही करो, इसीलिए वो एक प्याले में से बुला रहे हैं, ये मेरा खून है इसको पियो, एक ही प्याले में इसमें हिस्सेदारी डालो, ये कष्ट का प्याला है, ये दुख का प्याला है, इसमें पियो। हम सब लोग जब ये होता है आपका
प्रभु भोज,
प्रभु भोज उसमें हिस्सा तो लेते हैं। आजकल क्या है, लोगों ने मॉडर्न तरीका आ गया है, बड़े सुंदर से छोटे छोटे बर्तन आ गए उसमें डाल देते हैं सब, चलो भी उठा लो सब। लेकिन हाँ, इसमें ऐसे तो इसका वो चिन्ह नहीं था, चिन्ह ये था उसका। वो सिर्फ वो कौन सा लहू था, वो लहू था क्या पिला रहे प्रभु यीशु मसीह, वो सिर्फ चिन्ह था। उसका मतलब क्या था कि ये कष्ट का प्याला है और इस कष्ट के एक प्याले में सबकी हिस्सेदारी होनी है, सबने इस दुख के प्याले में से पीना है। तो वो डिटेल में हम बात करेंगे जब हम प्रभु भोज वाली क्लास करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात तो ये हो रही है कि वाचा बांधने का मतलब है पूरी तरह से समर्पण कर देना कि लो परमेश्वर आज से मैं तेरी ही इच्छा अच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें ही खुश करूंगा, ठीक है, अपनी इच्छा को खुश नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शर्त रख रहे हैं अपने चेला बनने की। क्या रख रहे हैं शर्त? हमारी शुरुआती क्लास में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे,
अपने आप का इनकार करे।
सबसे पहले अपने आप के इनकार का मतलब पता क्या है?
अपनी
इच्छा, अपनी इच्छा साइड पे रख दो, वो नहीं चाहिए, ठीक है। अपने आप का इनकार का मतलब है अपनी इच्छा, जो मैं चाहता हूँ वो अब खत्म, और और अपनी क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब जो शारीरिक तौर पे आपको लगता है मुझे ये कष्ट, जैसे मुझे गालियां बकना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे क्रोध बहुत आता है, या मुझे और बहुत सी मेरे में कमजोरियां हैं, तो जब जब मसीह में मैं आ जाऊं, जब मैं बोलूं मैं मसीही हूं, तो मान लो मुझे, हम रोड पे जा रहे हैं उदाहरण, कोई गाली दे दी, गुस्सा तो बहुत आया मैं मारूं, लेकिन अपने आप को मारा नहीं, ये है क्रूस उठाना, ये है क्रूस कंट्रोल, कि मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं अपने आप को मार दिया मैंने, ठीक है। इसीलिए वो जो प्रभु यीशु मसीह पूरे रास्ते खुद सलीब उठा के जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सलीब में हिस्सेदारी दी। हिस्सेदारी का मतलब क्या, कि आपको भी उठानी है वो सलीब। हाँ, तो वो सलीब उठाने का मतलब चिन्ह, वो भी चिन्ह है, नमूना है। नमूना क्या, कि जो उसका पीछा करेंगे ना उनको वो उठानी है। और हमारी क्रूस यही है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है हमारे शरीर को, उसके विपरीत जाते हुए हमें सहना है, ये है क्रूस उठाना। और तीसरी चीज प्रभु का पीछा करना, क्या करना, पीछा पीछा उसके पीछे पीछे चलना। तो ये है चौथी डुबकी, ये है चौथा कदम पूरी वाचा बांधने का। और आप देख सकते हो कोई इस कदम पे नहीं पहुंचता है। पिछली बार हम वो अंकल के घर गए थे, लेकिन पूरी वाचा बांधने का फैसला नहीं लिया अभी तक। तो किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने भी जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने भी क्या बोला, अगर 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 बहुत बड़ी बात है, अगर का मतलब है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपका फैसला है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पीछे आना है तो ये तीन चीजें करनी है, नहीं तो वापस चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह जिनको चंगा करते थे उनको क्या बोलते थे, जाओ अपने अपने घर को जाओ। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरीके से जानते थे ये किस इच्छा से आते हैं। इसीलिए आज भी देखो दुनिया में चर्चेज में यही होता है, ठीक है। क्या लोग आते हैं, लोग जाते हैं लालच में। लालच क्या होता है, आज मेरा ये होने वाला है, आज आज शायद कानों में खुजली हो रही है, आज शायद पास्टर मेरे बारे में भविष्यवाणी करेंगे, तो ये इच्छा से जाते हैं। कुर्बानी के दुख को झेलने की इच्छा से कोई जाता है कि नहीं मैं तो दुख झेलूंगा, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है मैं तो झेलूंगा, ठीक है। तो ये है वो बलिदान। और पढ़ लो आगे रोमियां 12:2, रोमियां 12:1-2 देख लो।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
ये आदमी आगे आगे पढ़ लो, इस संसार जैसे
ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए। चाल चलन में अगर नहीं दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ,
जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति, भली और भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
देखो, तो इस संसार की आत्मा को ठुकराना है और नए मन होने की वजह से परमेश्वर की इच्छा पे बदलते जाना है। यही परमेश्वर को बलिदान स्वीकार है। परमेश्वर को आपको पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए जीवित बलिदान, मन भावता बलिदान, जिसको परमेश्वर स्वीकार करे। ठीक है, तो ये पूरी वाचा जो है, पूरी वाचा में हमारी एक, हम बदल जाते हैं, हम अपनी इच्छा का इनकार कर देते हैं। उसका मतलब क्या है, ये बलिदान का मतलब क्या है पता है? मेरे सपने थे पहले, जब मैं वाचा बांधने से पहले मेरे कुछ शारीरिक सपने थे, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, मैं वो हासिल करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा पर्सनल जो तजुर्बा, मेरा भी बहुत बड़ा सपना था, मैं इंडिया में सेटल नहीं होना चाहता था। मेरा सपना था कि मुझे या तो अमेरिका में सेट होना है या कनाडा में सेट होना है, और मैंने कनाडा की पीआर भी अप्लाई की ब्रदर, मैंने परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की, 60,000 रुपये देके ना और $500 एम्बेसी फीस देके अप्लाई की। लेकिन जब वाचा बांधी, वाचा बांधने के बाद पता चला कि परमेश्वर की मेरे लिए योजना नहीं है। ठीक है, तो उस सपने को वहां ही कैंसिल किया। घर वालों से विरोधता भी मिली, हमारे पैसे खराब कर दिए, ये हुआ वो हुआ, क्या करें, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आज मेरी स्थिति ये है कि जब भी मुझे कोई बाहर जाने का बोलता है ना, मैं सीधा मना कर देता हूँ। हालांकि जिस लाइन में मैं हूँ, मुझे बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन मैं मना कर देता। आपको बोला ना मुझे इंग्लैंड जाने के लिए, अभी मेरी कंपनी बोल रही थी, मैंने मना कर दिया। तो ये है बलिदान, कि आपके जो शरीर, पुराने इंसान को जो अच्छा लगता था उसको अब छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे लोगों का क्या स्थिति है, यहाँ पे लोगों को क्या करना है, बाहर जाना है। मसीही में ज्यादातर लोगों को ये क्रेज है कि मसीह में आएंगे तो बाहर वीजा जल्दी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। जी, आपने अगर शायद नहीं पता हो, बहुत से लोग फादर लोगों के साथ जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं। तो वो सपने, आपके जो मंजिलें, आपका समय, आपका गुण, आपका धन, आपकी सेहत, सब कुछ आपने किसको दे दिया?
परमेश्वर।
इच्छा के त्याग का मतलब यही है, परमेश्वर की इच्छा लेने का मतलब, परमेश्वर आज से मेरा सब कुछ क्या हो गया, मेरा समय भी आपका हुआ, मेरे गुण भी आपके हुए, मेरा धन भी आपका है, मेरी सेहत भी आपकी है, मेरा मन भी आपका है। अब अगर हमें अपने पर्सनल कुछ के लिए चाहिए तो परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर ये कर लो अभी मुझे, ये थोड़ा शारीरिक तौर उसके लिए, ऐसी स्थिति होनी। इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना दशवांश, मैं उनको बोलता हूँ परमेश्वर को दशवांश नहीं चाहिए, परमेश्वर को 100% चाहिए, आपका 100%, उससे एक भी कम नहीं, एक भी कम नहीं। आप अगर सोचो, आपने अगर वाचा बांध रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अपने पुराने मन की भी करूंगा, तो वो परमेश्वर वाचा स्वीकार करेंगे? नहीं। मान लो आपने 20% ही रखा, आप बोल रहे हो 80% मैं परमेश्वर का देता हूँ, 20% मैं रखता हूँ, वो वाचा कभी भी स्वीकार नहीं होगी। परमेश्वर को चाहिए 100%, तेरा दिल मुझे दे दे, तेरा दिल चाहिए मुझे, दे सकता है, दे सकता है। इसके लिए एक उदाहरण लूंगा मैं। एक बड़ा अमीर आदमी एक भिखारी को रास्ते में बोलता है, कुछ आज क्या रेट है जलंधर में एक अच्छी कोठी के, कुछ 1-2 करोड़ लगा, 1 करोड़ लगाओ, 1 करोड़ की कोठी, बोलता है मैं तुम्हें 10 रुपए में देता हूँ, क्या लगेगा? क्या बात है, 1 करोड़ की कोठी 10 रुपए में मिल रही है। और ये भिखारी अभी क्या करता है, भिखारी वहां पे फिर क्या करना चाहिए, वो बार्गेनिंग जिसे बोलते ना, चलो कम करने की कोशिश करते हैं। तो भिखारी बोलता है अगर मैंने 10 के 10 दे दिए तो मेरी जेब में क्या रहेगा? तो भिखारी बोलता है मैं आपको 5 देता हूं, पांच मैं अपने खर्चे के लिए रखता हूँ, तो पांच चलेंगे क्या? तो ये बोलता है मालिक कोठी का, नहीं मुझे दस ही चाहिए। फिर बोलता है चलो सात कर लो, तीन मेरे पास रहने दो। नहीं बोला दस तो दस ही, चलो नौ कर लो ऐसे। तो वो बोलता है तू इसके लायक नहीं है, तेरे को इतनी महंगी चीज मैं दे रहा हूं और तू अपना ये जो तुम्हारे पास है वो देने के लिए तैयार, एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर जो हमें जीवन देने जा रहा है ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और पौलुस उसके बारे में पता क्या बोलता है, ना तो कभी हमारे मन में आया, ना दिल में आया, ना ही कभी सोचा, ऐसी महिमा परमेश्वर ने रख छोड़ी है कलीसिया के लिए। और उस पर भी जब हम बोले नहीं मैं 80% दूंगा, 20% मैं अपना ही करूंगा, जब मैं 50% परमेश्वर के लिए करूंगा, 50% अपने, तो ऐसी वाचा परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। जो जीवन मैं अपना, जो मैं जैसा स्वभाव मेरा है वैसा स्वभाव तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम क्या कर रहे हो, नहीं इतना दे सकता हूं मैं, इतना दे सकता हूं। तो यही है बात, हमारी बलिदान की वाचा है, और बलिदान वाली वाचा में हमें तो दुख झेलने हैं। ये पढ़ लो बात, भजन संहिता जबूरा की पोथी 50:5।
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है।
तो देखो मेरे भक्तों को मेरे, कौन सी वाचा? बलिदान वाली वाचा। ये वाचा बलिदान वाली है, ये कोई आम खास वाचा नहीं है, ये है बल। और जो ऐसी वाचा बांधते हैं वो होते हैं परमेश्वर के संत, इंग्लिश में है संत, सेंट्स, संत, ठीक है। तो जब हम पूरी वाचा बांधते हैं तो जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बांधी थी ऐसे ही बांधनी है। पढ़ लो इब्रानियां 10:7। दस की सात, इब्रानियां 10:7।
तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ।
देखो तो प्रभु यीशु मसीह, तो ये चिन्ह के द्वारा बांधी जाती है वाचा, ये है चिन्ह पानी के द्वारा बपतिस्मा, इसके बारे में गहराई में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो ये होती है चौथा कदम, ये कौन सा कदम है? चौथी डुबकी या चौथा कदम। उसके बाद पांचवी डुबकी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी डुबकी में क्या होता है कि हमने जो वाचा बांध तो ली है, अभी बस वो एंड नहीं है, बपतिस्मा एंड नहीं है, बपतिस्मा शुरुआत है। किस चीज की? कि जो मैंने वाचा अभी बांधी है अभी इसको पूरा भी तो करना है, पूरा भी तो करना है ना, जो मैंने वायदा किया है परमेश्वर से। हमारे, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और सब हिंदू भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम बोलते हैं हमें कुछ काम करवाना है, हम रिश्वत देते हैं, ये हमारा काम हो जाए ना तो मैं लंगर लगाऊंगी या लगाऊंगा उस दिन को, या ये ऐसा ऐसा होता है ना, है ना, बहुत उसको, अगर अगर हम वो पूरा नहीं करते तो हम पे बोझ रहता। क्या बोलते हैं हम, अगर हम पे कष्ट आ जाता, हाँ हमने वो सुखना सुखी थी वो पूरी नहीं की, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो पांचवा कदम है जब हम वाचा को प्रैक्टिकली पूरा करना शुरू कर देते हैं। पढ़ लो भजन संगीता 116:14, जबूरा दी पोथी 116:14, भजन संगीता 116:14।
मैं युवा के लिए अपनी मंदिर सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा।
मैं अपनी मन्नतें क्या करूंगा? तो मन्नत यही है, मन्नत क्या, परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर मैं अब से ये नहीं करूंगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम मन्नत पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो ईसाई हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड रखा है। स्टैंडर्ड मतलब एक एक योग्यता, और वो योग्यता क्या है वो पढ़ लो, रोमिया 8:29।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
देखो तो परमेश्वर ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे जो उसके बेटे के स्वरूप पे होंगे वो स्वीकार है, वो स्वीकार है, ठीक है। और इसके बाद एक बढ़ोतरी का जीवन शुरू होता है जब हम पूरा करना शुरू कर देते हैं ना, मन्नतें अपनी वाचा को पूरा करना हर रोज शुरू करते हैं, तो एक फिर बढ़ोतरी का वो होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 ये पढ़ लो।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
देख लो ये इस जहां पे भी शर्त है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है,
नई सृष्टि,
नई सृष्टि है। हाँ,
पुरानी बातें बीत गई,
हाँ
देखो सब बातें नई
हो गई। हमारे सपने, हमारे गोल्स, एम्बिशंस, हमारे इच्छा, हमारा सब कुछ क्या हो गया,
नया हो गया।
इसीलिए परमेश्वर के वचन में बोलते हैं अपना धन यहाँ पे नहीं इकट्ठा करो, कहाँ इकट्ठा करो, उधर इकट्ठा करना है हमें अपना धन, ठीक है, वहां सेविंग करनी है। तो जो मसीही, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं वो है मसीह में, जो वाचा बांध लेते हैं वो है मसीह में, वो है नई सृष्टि, वो बलिदान होना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज है जो मैटर करती है, ये पढ़ लो गलातियां 6:15। आप यहूदी हो या यूनानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नई सृष्टि हो या नहीं हो। गलातियां 6:15
क्योंकि ना खतना और ना खतना
रहित, खतना मतलब यहूदी, खतना रहित मतलब अन्य जाति, कुछ नहीं इनको लेना देना, इनके साथ कुछ नहीं है। क्या आगे, परंतु
परंतु
नई सृष्टि है जो परमेश्वर को परवान है। शारीरिक तौर पे आप क्या हो, खतने वाले हो या खतना रहित हो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को चाहिए नई सृष्टि हो या नहीं हो। अगर नई सृष्टि नहीं हो तो सॉरी आप नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। तो नई सृष्टि के बारे में कोलोसियों 3:9-10 पढ़ लो, जो ऐसी एक बात है जो हमारे जीवन में ऐसा एक कांटा है जिसे हमें जितनी जल्दी हो सके निकालना है। ये देख लो कोलोसियों 3:9-10
एक दूसरे से झूठ मत बोलो,
ये बहुत बड़ा कांटा है,
क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है।
अगर पुराना मनुष्यत्व उतारा है तो झूठ मत बोलो,
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
हमारा सृजनहार कौन है, उसके स्वरूप पे बदलता जाता है। तो हमने पुराना मनुष्य तब उतार दिया है, जब हम वाचा बांधते हैं उस समय हमें एक नया इंसान मिलता है, नया मन, नया मन। अब दो मन हो जाते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आज नहीं, ठीक है। तो अब दो मन है, एक तो पुराना मन, एक तो नया मन। जब शुरू शुरू में क्या होता है, नया मन बेचारा इतना सा होता है आत्मिक, और पुराना मन इतना बड़ा। जब भी नया मन कुछ आत्मिक सलाह देगा, पुराना मन चुप बैठ ऐसे पकड़ लेगा। तो नए मन को क्या होना है, नए मन को बढ़ना है और पुराने मन को घटना है, स्थिति उल्ट होनी है। पुराना मन इतना होना है और नया मन इतना होना है, तब जाके हम आत्मिक बन सकते हैं, तब जाके हम पे कंट्रोल आ जाएगा, हम अपने आप को काबू में कर सकेंगे, नहीं तो पुराना मन हमेशा नए को दबाएगा। चल चुप बैठ, वो साइड पे बैठा रहे, ऐसे ही होता है हमेशा। हमारी लड़ाई जो है, पता कितने लोगों के साथ है, कितने चीजों के साथ है,
एक शैतान के साथ, एक मन के साथ,
तीन जनों के साथ है। सबसे पहले मेरी लड़ाई मेरे अपने साथ है, और हम ज्यादातर यहाँ पे ही हार जाते हैं। ठीक है, मेरा आत्मिक मन कहता है कि मुझे उस शादी में नहीं जाना है, मेरा पुराना मन कहता है अगर मैं उस शादी में नहीं गया तो मेरे से बात करना बंद कर देंगे वो, मेरा मुझे छोड़ देंगे, मैं क्या करूंगी अकेले में बैठ के, क्या सोचा करूंगी। तो पुराना हम मन दबा देता है, छोड़ चल चलते हैं। तो यहाँ पे है एक जद्दोजहद। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मा तो चाहती है, शरीर कमजोर है। ठीक है, तो बदलना है। अब ये दो मन, एक तो संसारिक मन है, एक आत्मिक मन है। संसारिक मन कंट्रोल करता है ज्यादातर, लेकिन आत्मिक मन को कंट्रोल करना चाहिए। आत्मिक मन जब तक बढ़ता नहीं है ना, तब तक वो नहीं होता। इसे क्या बोला है, नई सृष्टि। क्या बोला, नई सृष्टि। अब नई सृष्टि एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा माँ की गर्भ में पड़ता है, कितना होता है, एक छोटा सा अंश, क्या होता है, और जब माँ गर्भवती होती है तो क्या बोलते हैं, खाना अच्छा खिलाना है इसको, क्योंकि खाना किसको जाना है,
बच्चे।
जब बच्चे को जाएगा तो बच्चा क्या होगा,
बढ़ता
जाएगा ना। अगर मान लो खाना नहीं गया अंदर, अगर अंदर खाना नहीं गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, कमजोर, क्या मर ही जाएगा, कमजोर भी होगा और मर भी सकता है, सही ना। कई बहनों के पेट में ही बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका अभी नई सृष्टि का जो खाना है वो है आत्मिक खाना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य का वचन। और जब सत्य का वचन खाते जाएंगे नई सृष्टि बढ़ती जाएगी। अगर खाना बंद हुआ, नई सृष्टि की बढ़ोतरी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत है कुछ जो चलते हैं साथ साथ आत्मिक जीवन में। ठीक है, तो इसलिए हमें फिर रोज जो वाचा बांधी है उसको पूरा करना है, अपनी मन्नतों को पूरा करना है, और पूरा करना आसान नहीं है, वफादार रहना आसान नहीं है। क्योंकि पत्रस क्या बोलता है, पहला पत्रस 4:12,
हे भाई प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है,
आग, दुख रूपी आग है जो भड़क उठी है,
इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है।
तो अगर तुम पे आग जैसा भी दुख आ जाए तो अचंभा मत करो कि ये क्यों हो रहा है, क्या परमेश्वर मेरे से दूर चला गया है या नहीं है। दुख जो मसीह में है, मैं संसार की बात नहीं करता, जो मसीह में है, जो सच्चे जीवन मसीह में व्यतीत करते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के प्रिय है ना, उन पे कष्ट जरूर आएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने खास काम के लिए अपने प्रियों को बुलाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए किसको चुना, और भी दूत बहुत से, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था उसको उठाया। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी है, अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर मसीह में हैं, अगर वाचा बांधी है, तो परमेश्वर हमें फिर, अगर हम पे कष्ट आते तो समझ लो हम परमेश्वर के नजदीक हैं, कि परमेश्वर ने हमें ये चुन लिया एक काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा है जैसे चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती को जितना उबालोगे उतना प्रभाव जो है ज्यादा बढ़िया आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना हम पे कष्ट आएगा उतना ही हम निखरेंगे, उतना ही हमारे कैरेक्टर में बदलाव आएगा, निखार आएगा। पहला पत्र से 1:7 भी पढ़ लो।
यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल है।
देखो ये परमेश्वर को अब खाली विश्वास नहीं चाहिए। कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। परमेश्वर परखेगा तुम्हारे विश्वास को कितना दम है। क्या सचमुच मन से प्रेम करते हो या बस ऐसे ही दिखावे के लिए? ठीक है, तो ये परख चलती है। परख कैसे चलती है? परमेश्वर देखता है हर रोज, इसने वाचा तो बांध ली है, क्या ये अभी अपनी वाचा को पूरा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है परख चलती है, ये है पांचवा कदम। जब हम अपनी वाचा को प्रैक्टिकली पूरा करना शुरू कर देते हैं, और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है फिर संसार से, परिवार से। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, तीन दुश्मन तो बताए नहीं। पहला शरीर, अपना आप, मैं खुद हूँ सबसे पहले मेरे अपना दुश्मन। उसके बाद दूसरा दुश्मन है संसार। संसार में आपके आ जाते हैं आपके रिश्तेदार, आपके नज़दीकी, आपके सगे संबंधी और आपके दोस्त मित्र, ये है संसार। तीसरा दुश्मन है शैतान। तो पहले दो लेवल पे ही हम क्रॉस नहीं करते तीसरे, अब तो शैतान को जरूरत ही नहीं पड़ती।
मन चले आराम, शरीर मन वही टूट जाते हैं,
शैतान की जरूरत ही नहीं पड़ती। शैतान तो एंड में आता है, जब तुम दोनों क्रॉस कर लो फिर बोलता है आजा चल, अब मैं तुम्हें देखता हूँ अब कितना दूर बढ़ गया है। चलो, तो ये है पांचवी डुबकी। छठी डुबकी या छठा कदम जो है वो ये है कि ये दुख सहते सहते चलते चलते हम में आत्मा के फल दिखने शुरू हो जाते हैं। जो आत्मा के फल है ना, वो आत्मा के फल क्या हैं? ठीक है, जो हम पढ़ते हैं गलातियां 5:22 में पढ़ लो, गलातियां 5:22।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास।
तो ये आत्मा के फल है। सबसे पहले प्रेम की आत्मा, उसके बाद आनंद, उसके बाद शांति, उसके बाद लंबा दुख सहने की शक्ति, उसके बाद
भलाई, कृपा भलाई,
कृपा और भलाई, उसके बाद चंगाई और विश्वास। तो ये एक चार्ट है जिसमें ये सारे ये जो आत्मा के फल लिखे हैं ना, ये कैसे कैसे चलते हैं बताया है। सबसे पहले विश्वास। विश्वास का मतलब है जब प्रेम लड़ाई के मैदान में पहुंच गया। जब हम विश्वास बोलते हैं इसका मतलब प्रेम जो है, जो हमारा हम बोलते ना प्रेम, वो टेस्टिंग है। एक एक तरह का हमारा जिसे बोलते हैं ना इंची टेक, कि हमें देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ। सबसे पहली चीज़ है विश्वास। विश्वास का मतलब प्रेम जो है लड़ाई के मैदान में है। उसके बाद दूसरा है अपने आप पे काबू। अपने आप पे काबू का क्या मतलब है? अभी हमारी प्रेम की ट्रेनिंग चल रही है, हम सीखते हैं अपने आप पे काबू करना, तो वो ट्रेनिंग, तो प्रेम की ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद तीसरा है अच्छाई, भलाई। भलाई क्या? जब हम में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, हम अपने आप पे काबू कर लेते हैं ना, तो भलाई निकलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है प्रेम ने काम करना शुरू कर दिया। आप ट्रेनिंग से निकल के अभी काम कर रहे हो, अभी आप भलाई का कर रहे हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी कर रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो। उसके बाद आनंद। आनंद का मतलब है कि भलाई करते करते मुझे अब क्या मिल रही है? आनंद मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, मैं आनंद कर रहा हूँ, तो प्रेम आनंद आनंद की स्थिति में है। उसके बाद क्या आती है? शांति। शांति का क्या मतलब है? कि प्रेम अभी स्थिर हो गया है, प्रेम डगमगाने वाला नहीं है, प्रेम मैंने अभी अपने आप में डेवलप कर लिया है, शांति। उसके बाद आती है
कृपा।
कृपा मतलब जब हमारा प्रेम समाज में पहुंच जाता है, जब हम दूसरों पे दया कृपा करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद नम्रता। नम्रता का मतलब क्या है? कि नम्रता की एक सबसे बड़ी उदाहरण पता क्या बताऊं? हम दूसरों को सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप बोलो।
कोई गाली है, कोई बात
नहीं, वैसे भी और भी सब बातों में सुनना, सब सुनना सबसे अच्छा है। अच्छा आप बोलिए, ठीक है, अच्छी बात है, सुनो, सुनना, आप सुनने के लिए तैयार हो। मतलब प्रेम जो है उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, आप बोलिए, कोई बात नहीं। अब मैं बोलूं? हाँ, ये है नम्रता। उसके बाद चलते चलते जब हम धीरज में बढ़ जाते, तो जब हम पे दुख आते रहते आते रहते, तो फिर जब हम लंबा दुख भी आ जाए ना, हम उसको सह लेते हैं। तो ये प्रेम के अलग अलग प्रकटीकरण होते हैं इन इन सब आत्मा के फलों से। ये है आत्मा के फल, प्रेम, अपने आप पे काबू, भलाई, आनंद, शांति, ये देखने हैं, ये हम में है। अगर नहीं है तो ये लेके आने हैं। ये है आत्मा के फल, ये हम में होने चाहिए। ऐसे ही शरीर के भी है, वो 19वें वचन में है, वो आप बाद में पढ़ते रहना, वो छोड़ो। तो गलातियां 6:10 में भी पढ़ लो ये बात, एक मसीही का कैसा व्यवहार होना चाहिए।
इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ।
सबके साथ
इसमें लिखा हुआ विशेष करके भलाई
वो ये भाई कोई और है, मैं बताऊंगा कौन से भाई है। विश्वासी भाई भी कौन से है वो भी मैं बताऊंगा, वाचा बांधे हुए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हम हो सकता है तो सबके साथ अच्छा करो, लेकिन खास करके विश्वास वाले भाइयों के साथ। तो फिर से पढ़ लो ये बात।
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ।
तो ये तभी हम कर सकते हैं अगर हमारे मन में प्रेम हो, अगर नींव अच्छी डल गई है, अगर नई सृष्टि के बदलने से, मतलब नई सृष्टि के आने से हम में बदलाव आ रहा है। अगर नई सृष्टि आने के आई नहीं है, बढ़ नहीं रही है, तो उससे कोई हमारे कामों में भी प्रकट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसीलिए हम बदलाव बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि आपके नए होने की वजह से संसार के रीति के अनुसार नहीं, बल्कि नई सृष्टि के तौर पे बदलना है, नए मन के तौर पे बदलना है। तो ये वो स्थिति है जब हम धार्मिकता को प्रेम करते हैं और पाप को नफरत। पाप नहीं करना है और धार्मिकता को प्रेम, ये है 6 डुबकी। लेकिन यहाँ पे भी कोर से अभी छुटकारा नहीं मिला है, अभी भी कुछ करना है। 7वीं और अंतिम डुबकी वो क्या है? 7वीं और अंतिम डुबकी है, पढ़ो, कि मृत्यु तक भी मैं वफादार रहूंगा। और इसका मतलब पता क्या है 7वीं और अंतिम डुबकी का? कि मुझमें एक ऐसा प्रेम डेवलप हो जाता है कि मैं अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना शुरू कर देता हूँ। ये है अंतिम सीढ़ी। उसमें क्या, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई, वो स्टीफन ने दिखाई। स्टीफन था वो पहला मेंबर जो कलीसिया में गया, जो कलीसिया में गया कि क्या 4-5 घंटे में वाचा पूरी की और निकल लिया। स्टीफन को कौन मार रहा था? पौलुस वगैरह थे ना, पथराव चल रहा था। स्टीफन के शब्द भी वही थे, प्रभु यीशु मसीह के शब्द भी वही थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे मार रहे थे, वो कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे मेरे पिता, इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। स्टीफन ने भी यही बोला था। तो ये है मंजिल प्रेम की। जब हम इस स्थिति पे पहुंच जाएं, तो समझ लो कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अफिसियों 6:13 कि जब अब ये गुण आप में आ गए, आत्मा के फल आ गए, लेकिन फल आने के बाद उसका नतीजा ना आए तो कोई फायदा थोड़ी है। ये पढ़ो,
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
तो देखो इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ कर लिया, शस्त्र पहन लिए, आत्मा के फल भी आ गए। अभी आपको आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ी है कि जब लड़ाई आए और आप हथियार डाल के साइड पे निकल जाओ, क्या करना है, खड़े भी होना है, अब टेस्ट होना है, ये गुण आने के बाद आपका क्या होना है, टेस्ट। बातों से थोड़ी हो जाएगा कि हाँ आप में आ गए, देखना भी है तो सच में आए हैं या नहीं है, फिर परमेश्वर आपको वैसी स्थिति में डालेगा, वैसी स्थिति में डालेगा। अब दिखाओ अपने वो आत्मा के फल है या नहीं है, ये है अंतिम। तो वही स्थिति में बोल रहा हूँ आपको कि स्थिति ये कि आपको मृत्यु तक का भी वो हो जाएगा शायद कि आप मर रहे हो, आपको मार दिया जाए, मार रहे हो और आप मरते वक्त क्या बोल रहे हो, उनको श्राप दे रहे हो या ये बोल रहे हो परमेश्वर इनको माफ करो। तो ये है संपूर्ण प्रेम की जो अंतिम मंजिल, ये है सातवां कदम। इसके प्रभु यीशु मसीह ही बोल रहे हैं मृत्यु तक जो वफादार रहेगा वही क्या होगा,
अनंत जीवन का
वही बचाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टेस्ट है ना, टेस्ट ये एक दो दिन महीने साल का नहीं है, ये कब तक है, मृत्यु तक। मृत्यु तक हमें ये करते जाना है, ऐसा नहीं है एक दो साल करके छोड़ देना है, करते जाना है, तब जाके क्या हो जाएगा, बालक जैसा शरीर। हाँ ठीक है, अय्यूब 1:4 भी पढ़ लो साफ साफ।
उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने सब खाने पीने के लिए
याकूब एक का चार
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो,
धीरज को अपना पूरा काम
करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ।
देखो धीरज को अपना काम करने का मतलब पता क्या है, आपको स्थिति में डाला जाएगा, आप धीरज बढ़ाओ, धीरज आएगा जब आप सीखोगे, मतलब आपको तजुर्बे में तजुर्बा दिया जाएगा। तो ये है, ये पॉलिशिंग है जिसे बोलते हैं ना, सोने को भट्टी में से सात भट्टी में से तो निकाल लिया, अब उसको क्या करनी है, पॉलिश करनी है, तभी तो चमक आती। तो ये है पॉलिशिंग, हमें मसीह जैसा स्वभाव अपने आप में लेके आना है। और जब ये कर लोगे तो अंत में क्या हुआ, जब यर्दन से निकला साथ में डुबकी लगा के तो क्या देखा, अरे वाह इतना बढ़िया बदलाव। तो ये तस्वीर है पहला पुनर्थान, ये तस्वीर है यर्दन का, मतलब क्या है आपको याद है क्या,
संसार।
यस, पहला और दूसरा संसार। तो जब संसार से बाहर आओगे पहला पुनर्थान पाके तो स्थिति क्या होगी, पढ़ लो भजन संहिता 17:15
17:15 जो दोषी और को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है।
नहीं, भजन संहिता 17:15
परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा।
जब मैं जागूंगा, जब मेरा पुनर्थान होगा, जब मैं देखूंगा मैं तुम्हारे जैसा हूँ
तो मैं संतुष्ट हूँ,
तो मुझे क्या होगी, वाओ संतुष्टि। क्या परमेश्वर योजना थी। तो ये है पहला पुनर्थान जब जो कलीसिया को मिलता है, जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र और परमेश्वर जैसा जो जीवन मिलता है, दिव्य स्वभाव, फिर मैं क्या होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा, सही ना, कि इतना बड़ा इनाम। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, यर्दन की ये जो नामान की सात डुबकियों का मतलब के पाप से छुटकारा पाना है तो सात कदम उठाने हैं, सात सीढ़ियां चढ़नी हैं, और ये सात सीढ़ियां ये हैं। और अंत में एक और बड़ा सुंदर वचन पढ़ लो, दूसरा राजा 4:35। बच्चे ने 7 बार छींका और उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई।
तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और असली आंखें खुली।
7 बार छींका और असली आंखें, ये 7 बार छींकने का मतलब यही है, 7 बार जो 7 कदम, जब बच्चे ने 7 कदम उठाए उसकी आंखें क्या हो गई, उसकी आंखें का मतलब क्या है, समझदारी की आंखें जो खुल गई। हाँ, तो ये जो 7 डुबकियां, जो 7 जो कदम आज हमने देखे, सुषमाचार युग में एक क्रिश्चियन के लिए है, लेकिन जब 1000 साल का राज्य आएगा तो ये 7 कदम मनुष्य जाति को भी उठाने पड़ेंगे। 7 कदम उठाने से ही छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा तो होगा, पाप से छुटकारा होना है तो ये 7 कदम उठाने हैं। और ये जो 7 कदम नहीं उठाएंगे वो जाएंगे कहाँ, दूसरी मृत्यु में। कहाँ जाएंगे,
दूसरी मौत में।
ठीक है, तो इसी के साथ परमेश्वर ही हम सबको आशीष करे, आमीन।